ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी एक्ट जो है आपके ऊपर जो है अब फाइन्स फिर किए जाएंगे अगर आपने ये क्रॉप जो है उसको बर्बाद करने की कोशिश की। जर्मन एक और जो बायोटेक कंपनी है जी क्योरवैक, जो कि आपको पता है कि ये भी वही जो है आरएनए टेक्नोलॉजी यूज करके अपनी वैक्सीन बना रही थी, उसने आज फाइल किया है केस अगेंस्ट बायोनटेक जो है, नॉट फाइजर, बायोनटेक। बायोनटेक भी जर्मन कंपनी है, तो उनके साथ उन्होंने कहा जी कि इन्होंने शायद हमारा पेटेंट कोई लेने की कोशिश की है, और हालांकि हम सारे जो हैं एक ही तरह का डेवलप कर रहे थे, लेकिन हम इनके ऊपर कोर्ट केस नहीं करेंगे, हम इनको सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपके ऊपर इन्फ्रिंजमेंट का जो लॉ सूट हम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि आपने शायद हमारा पेटेंट जो है वो चुराया है। अभी हमने बताया था लास्ट ईयर ही कि ये जो इनके सेकेंड जनरेशन जो वैक्सीन ये जो कर रहे थे वो इतनी अच्छी उनके रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, तो इन्होंने वो सारा कुछ खत्म करके नए शुरू कर दिए थे ट्रायल्स, और आरएनडी के ऊपर बहुत ज्यादा किया थे, और ये इन्होंने मिलके किया था यूके की जो जीएसके की जो कंपनी है उसके साथ मिलके ये कर रहे थे। तो इन्होंने इनको कहा है कि चूंकि दुनिया को अभी भी बहुत सारी वैक्सीन चाहिए और आप जो है लोगों को आपका बहुत ट्रस्ट, लोगों का बहुत ट्रस्ट है फाइजर बायोनटेक के ऊपर, तो आपसे भी ले रहे हैं, तो हम ये नहीं चाहते हैं कि हम ऐसा कोई लॉ सूट ले कि आपकी प्रोडक्शन बंद हो जाए, लेकिन जो हमारा पेटेंट का जो ये इन्फ्रिंजमेंट का मसला है उसको हमको आपके साथ सॉल्व करना पड़ेगा।
मींस कि यू कैन पे फॉर इट,
यस यू हैव टू पे फॉर। उन्होंने कहा है कि ये जो मैसेंजर आरएनए आपकी ये जो बड़ी कॉमिरनाटी जो वैक्सीन है जो बड़ी सक्सेसफुल चल रही है, वी हैव अ लॉट ऑफ रिगार्ड फॉर दैट, लेकिन ऑल बोथ ऑफ अस वी यूज मैसेंजर आरएनए टेक्नोलॉजी, तो आपने हमारा पेटेंट लिया है अपनी रिसर्च के लिए, तो उसके लिए आपको जो है वो करना, तो अब बिल्कुल वही बात है कि ये इनको बैठ के ये करना पड़ेगा,
कितने बिलियन डॉलर आपने देने हैं, एंड इवेंचुअली दे विल हैव टू पे,
दे विल हैव टू पे, दे विल हैव टू पे।
6:01 हो गया साहब, और चलिए हम चलते हैं अपने कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम, विल बी राइट बैक।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
मेरी मंगनी ना कराओ बाजी,
मंगनी कैंसिल, डायरेक्ट नकाह करा देते हैं। ओ बाजी
Salman Iqbal Films, ARY Films and Six Sigma Plus presents the much-awaited film London Nahin Jaunga.
Kal mangni hai Jameen saab, shart haar gayi ho tab mangni karo.
Shaadi maine Pakistani ladki se nahi karni.
To shaadi ke liye kaun se mulk ko imtihan mein dalna?
Releasing on Friday 8 July in cinemas near you, a rising star entertainment release.
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जा ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो, ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी, क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com, QTL बिकॉज वी केयर।
ओ माया मेहंदी रोका या व्यादा होवे मौका, प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर
स्वीट महल वालियां दा बिल्कुल नवा प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर, 100 तो लेके 700 तक दी कैपेसिटी, ते खाना उही लाजवाब, स्वीट महल वाला प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर, कन्वीनिएंटली लोकेटेड इन बॉन, हुणे कॉल करो अते अपनियां पार्टियां बुक कराओ, 416-433-9191 416-433-9191
प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
ओ बल्ले भाई बल्ले, मैं तो बन गई ओनर अपनी ट्रकिंग कंपनी की, क्योंकि मैंने ली थी ट्रेनिंग उस कंपनी से जिसके हैं 500 से ज्यादा 5-star गूगल रिव्यूज, नाम है मेज कंसल्टेंसी। तो अगर आपको भी ट्रक डिस्पैचर या फ्रेट ब्रोकर स्पेशलिस्ट बनना है तो आज ही ट्रेनिंग के लिए मेज कंसल्टेंसी को कॉल करें, नंबर है 9058262919, दैट इज 9058262919। बल्ले बल्ले।
आदमी बुलबुला है पानी का,
द पोएट, द राइटर, द लेजेंड गुलजार, लाइव इन कॉन्सर्ट अलॉन्ग विद टॉप बॉलीवुड सिंगर्स,
दिल ढूंढता नाम जाएगा।
फ्राइडे जुलाई 15th एट प्रेस्टिजियस रॉय थॉमसन हॉल, वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, डोंट मिस इट, गुलजार्स इजाजत।
और पानी की बहती सतह पर
जी,
हाँ जी, अच्छा मरीज भाई, आप वो एक बड़ा ही जबरदस्त नेटफ्लिक्स पे आता है सूट्स, सूट्स देखते हैं आप, ये जो लॉ सूट्स होते हैं उसके ऊपर है। ओ माय गॉड, इट इज सो stunning. It is so stunning. You will understand कि ये जो अमेरिका के अंदर ये जो कॉरपोरेट लॉयर्स बैठे हुए हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में, एक तो उनकी सैलरीज हैं, बेनिफिट्स हैं, उनके बोनसेस हैं, और क्या लाइफस्टाइल है उनका, क्या पूरे पूरे मैनहट्टन जैसी जगह के ऊपर उन्होंने पेंट हाउसेस लिए हुए हैं, एंड वाओ क्या वो गाड़ियां चलाते हैं और क्या वो सूट्स पहनते हैं. तो वो सूट्स जो है ना, उसके अंदर वो कोई लिखने वाला भी मुझे लगता है कोई लॉयर था जिसने वो लिखी है. 9 seasons आप सोचें, इतना वो, इट इज सो फेमस कि 9 seasons उसके आ चुके हैं. और उसमें वो बताते हैं कि ये जो बड़ी बड़ी ह्यूज कंपनीज जो के, यानी उनके पास दिखाया हुआ है, जैसे ये एक जो कंपनी दिखाई हुई है उन्होंने, इस कंपनी के पास कोई भी ऐसा क्लाइंट नहीं है जो 100 million US dollar का से कम का है, राइट. सो वो सारे क्लाइंट्स जो हैं उनको ये लोग देख रहे हैं, एंड दे ओनली पिक अप फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं, सिर्फ दे ओनली हायर इन देयर लॉ फर्म हार्वर्ड ग्रेजुएट लॉ ग्रेजुएट्स, वो लाते हैं. और वो लड़के क्या कोई ब्रिलियंट हैं, और वो क्या कोई जबरदस्त केसेस लड़ते हैं, और क्या वो वहां पे वो जो सारी उनके आपस में जो कंपनी के बीच में जो लॉयर्स हैं सारे, बिकॉज दे आर ऑल टॉप लॉयर्स, राइट, दे आर ऑल हार्वर्ड ग्रेजुएट्स, तो उनके अपने बीच में क्या दुश्मनियां हैं, और क्या मतलब दुश्मनियां तो नहीं कह सकते, क्या राइवलरीज हैं,
कॉम्पिटिशन
है, और कैसे वो भाई क्या वो अमेजिंग, और क्या उसमें स्टार्स भी जो रखे हुए हैं वो भी, आई मीन दे डोंट लुक लाइक स्टार्स एट ऑल, द वे दे आर टॉकिंग, द वे दे आर रीजनिंग एंड सेइंग थिंग्स, इट लुक्स लाइक ये खुद भी लॉयर्स
हैं, रियल लाइफ
है. या, ये सारे लॉयर्स हैं. उसमें बाय द वे आपकी मेगन मर्कल भी है.
Is she?
She's there. Yeah, 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 yeah. So she also has a huge role there.
Achha,
so she is the legal clerk in the, you know, in that company.
अभी भी काम करती हो?
नहीं, अब तो नहीं, मुझे पता है अब तो खैर वो उसके सारे वो बन गए होंगे ना पहले ही. तो बहरहाल वो भी है इसके अंदर, तो वो भी इसने, तो इट इज अमेजिंग. तो वही मैं अपने बेटे को भी बोल के कह रही थी, मैंने कहा आई विश यू बिकम अ लॉयर लाइक दिस वन, तो जैसे वो है. लेकिन आपको तो पता ही, हमारे बच्चे हैं माशाल्लाह से
बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है,
स्मार्ट,
वेरी स्मार्ट एंड वेरी इंटेलिजेंट.
अच्छा अच्छा, चलो जी ठीक है. अच्छा जनाब, रॉयटर्स की ये खबर है. रॉयटर्स की इस खबर के मुताबिक रशिया ने अपनी जो बम्बार्डमेंट है वो और ज्यादा बढ़ा दी है. आज उन्होंने एक मॉल के ऊपर की है, एक मार्केट के अंदर जो स्लो वेंस का जो एरिया है वहां पे यूक्रेन के अंदर, और उसके अंदर खबरें आई हैं कि 2 लोगों की वहां पे डेथ हो गई है और 7 लोग जो हैं बहुत बुरी तरीके से इंजर हो गए हैं. हालांकि ये जो मार्केट थी ये बंद हो रही थी, लेकिन इसके अंदर फिर भी कुछ लोग थे और कुछ शॉप्स खुली हुई थी जिसकी वजह से ये लोग मरे और इनका इंजर हुआ. तो अब ये जब आज का वाकया हुआ है तो इसके ऊपर जो यूनाइटेड नेशंस की हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स मिशेल बैचले हैं, उन्होंने आज बहुत बैश किया इसको, रशिया को, और उन्होंने कहा कि ये इंतहाई सेंसलेस वॉर है और इमीडिएटली इसको जो है बंद करें, बिकॉज अनबेरेबल सिविलियन सफरिंग्स जो है आप उसको कॉज कर रहे हैं. exactly. और ये इसको जो है, ये हॉस्टिलिटीज जो है इनको एंड करें. तो पायन एंड कैसे होएंगी, एक तरफ से यूरोप जो है आपका वो सारा उनको जो असला दे रहा है, तो फिर ये एंड कैसे होएंगी, और आपने इनको क्यों वॉर के अंदर धकेला इस वक्त. मतलब है ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, ये आई विल जस्ट कंसिडर देम बातें. आप चाहते थे कि ये मरे बेचारे गरीब लोग जो है, वरना अगर आप चाहते तो आप इन दोनों को बिठाते और इनके बीच में कुछ जो है अग्रीमेंट करवाते, राइट. आपने उनको धकेला यूक्रेनियंस को, नहीं नहीं लड़ो मरो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, हम तुम्हें वेपन्स देते जाएंगे, तुम मरते जाओ, हैं. और फिर अब जो है मतलब सिर्फ लफ्ज बोले जा रहे हैं, ओ बड़ी हॉस्टिलिटीज हो रही हैं, ओ बड़ा जुल्म हो रहा है. तो फिर आप रोक लेते ना इस जुल्म को, आप रोक लेते, आप दोनों को बिठाते, कहते नहीं भी नहीं, लड़ाई नहीं करनी, लड़ाई झगड़े नहीं. आप तो खुद सारी दुनिया में आपने लड़ाइयां शुरू कर दी हैं, हर जगह आप अपने ट्रूप्स भेज रहे हैं, हर किसी को कह रहे हैं भाई हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, हम तुम्हें ये देंगे, ताइवान में हम नहीं ये होने देंगे, हांगकांग में हम नहीं ये होने देंगे, यूक्रेन में रशिया को हम नहीं ये कर. वो कौन है आप भाई, आप कौन है, आप क्यों ग्लोबल पुलिसमैन बने हुए हैं, ना बनो ना ग्लोबल पुलिसमैन. वायरल जी वो जी आज फिर बड़ा उन्होंने वो किया. अच्छा जी, नॉर्वे के अंदर जो है बहुत ज्यादा डीप होने वाले हैं क्राइसिस. उसकी वजह ये है कि वहां पे जो उनके ऑयल एंड गैस के वर्कर्स हैं उन्होंने स्ट्राइक कर दी है. अब ऑलरेडी आपको पता है कि ऑयल एंड गैस बहुत ही कम आ रही है, और ऑयल एंड गैस सेक्टर में ही अगर लोग जो हैं वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं, तो नॉर्वे वैसे तो छोटा सा मुल्क है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि 89,000 barrels ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट ऑफ वन डे ये जो है इसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी. آپ سوچے ذرا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آج تو ٹیوزڈے ہے, کل وینزڈے کو یہ کرائسس اور زیادہ ڈیپ ہو جائے گا اور یہ جو ہے یہ ٹچ کرے گا 292,000 بیرلز لیس جو ہے یہ آئل نکالا جائے گا, تو اس کی وجہ سے یہ یعنی کہ 13% آف آؤٹ پٹ جو ہے وہ اور کم ہو جائے گی کل وینزڈے کو.
ویسے آئل کم ہے,
آئل آلریڈی کم ہے, آلریڈی اس کا دنیا میں کرائسس چل رہا ہے, اور پھر یہ جو ورکرز بھی اسٹرائک پہ جا رہے ہیں تو اس سے یہ اور زیادہ ڈیپ ہو جائے گا. تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ حالت بڑی پتلی ہے, اور ان کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں وہاں پہ لوگوں نے جو ان کو ایکسپرٹس کو کہا, اکنامک ایکسپرٹس نے گورنمنٹ کو کہ بھائی بیٹھو اور ان کے ساتھ کرو, لیکن ان کا ایک ہی وہ ہے ورکرز جو ہے وہ کہہ رہے ہیں انفلیشن بے تحاشا ہوگی, ہمارے ویجز بہت لو ہیں, ویجز جب تک آپ نہیں بڑھائیں گے ہم واپس کام پہ نہیں جائیں گے. تو اب دیکھیں گے کہ گورنمنٹ ان کی بات مانتی ہے کہ نہیں. ایسے یو کے کے اندر جناب آج بہت ہی بگ ڈے تھا, اور یہ آج ساری انٹرنیشنل ابھی مڈ ڈے میں, ابھی بالکل ان دا مارننگ نہیں بٹ مڈ ڈے سے یہ سارے انٹرنیشنل پریس کے اوپر یہ خبر چل رہی تھی, اے ہیوج شاکر فار بورس جانسن گورنمنٹ, کیونکہ ٹو کی منسٹرز ہیو ریزائنڈ فرام دا جانسن گورنمنٹ. اچھا جی, اور وہ دونوں ہی کی ہیں, ایک تو جو ہے جی ان کے فائنانس منسٹر ہیں اور ایک ان کے ہیلتھ منسٹر ہیں. اچھا جی, فائنانس منسٹر تو وہی ہیں رشی سونک جو ہیں وہ ہیں, اور جو ہیلتھ منسٹر ہیں وہ ہیں ساجد خان. دونوں نے آج ریزائن کیا. ہوا کیا, سب سے پہلے جو ہے یہ ساجد خان انہوں نے ریزائن کیا, ہیلتھ سیکٹری ہیں یہ, انہوں نے ریزائن کرتے ہوئے کہا کہ جی مجھے بالکل نہیں لگ رہا کہ یہ جو ہے میں ان گڈ کانشس کام کر سکتا ہوں. اچھا جی, کیوں انہوں نے ایسے کہا, کیونکہ بورس جانسن کا ایک جو منسٹر ہے سیکشل مس کنڈکٹ کے اندر پکڑا گیا ہے, اور پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے اس کے لیے اپولوجائز تو کیا لیکن مطلب اس کو نہ نکالا نہ کوئی سزا دی. اس کے لیے انہوں نے کہا جی کہ میں اس گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے کام نہیں کر سکتا, اور مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ جانسن کی گورنمنٹ جو ہے وہ اب کانفیڈینس لوز کرتی جا رہی ہے, کیونکہ یہ جو سیریز آف اسکینڈلز کانسٹنٹلی آ رہے ہیں, پارٹیز چل رہی تھیں جو ہے وہ ریبیوک کیے جا رہے تھے سارے ایس او پیز کو اور یہ چیزیں جو ہیں ساری, تو میں اس میں نہیں بیٹھ سکتا. اچھا, منٹس آفٹر دیٹ, رائٹ منٹس آفٹر دیٹ, کوئی 3 یا 4 منٹ گزرے ہوں گے تو رشی سونک جو ہے اس نے بھی اپنا ریزگنیشن دے دیا. اور رشی سونک نے کہا جی کہ یہ میری, مجھے لگتا ہے, مجھے پتا ہے, مجھے بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ یہ میری لاسٹ منسٹیریل مجھے جاب, کیونکہ اس لیول پہ پہنچ جانا مطلب ہے اکانومی منسٹر بن جانا یہ بہت بڑی پوسٹ تھی, تو یہ مجھے جو ہے یہ اب مشکل سے ہی ایسی جاب ملے گی, لیکن دس از اے فائٹ بٹوین رائٹ اینڈ رانگ اینڈ آئی ڈونٹ تھنک سو اٹ از ورتھ اٹ کہ میں منسٹری رکھوں.
These are the key.
آپ کو پتا یہ جو ساجد خان اس سے پہلے تھے یہ ہوم سیکرٹری تھے, تو بہت بڑی پوزیشنز پہ تھے یہ لڑکے.
نہیں مگر یہ دونوں ویری ہائی پروفائل منسٹریز,
ہاں بہت ہائی پروفائل منسٹریز ہیں. تو یہ جی ان دونوں لڑکوں نے جو ہے وہ کر دیا.
دس از جسٹ اے اسٹارٹ,
دس از دا اسٹارٹ. ہم تو پچھلے 1.5-2 مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ جانسن صاحب کی گورنمنٹ زیادہ دن چلنے والی نہیں ہے, یہ بالکل ہاؤس آف کارڈز بن چکی ہے. اب کسی دن بھی یہ کارڈز جو ہے نا گرنے شروع ہو جائیں گے, تو آج کے یہ 2 کارڈز جو ہیں یہ گر گئے ہیں. تو یہ گر گئے ہیں, تو یہ ہیوج نیوز ہے جناب آج, تو یعنی بالکل ہل گئی ہے ان کی گورنمنٹ اب جانسن صاحب کی. اور یہ ایسے, اچھا جناب یہ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا ایئر کینیڈا کا, تو آج ہم برٹش ایئر ویز کا بتا رہے ہیں. برٹش ایئر ویز از ناٹ کینسلنگ 1, 2, 3, 4 ہنڈریڈز آف فلائٹس جو ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ظاہر ہے کہ سمر کا جو اسکیڈول ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ کرے گا. سو موسٹ آف دا فلائٹس جو ہیں یعنی کہ جن بےچارے ٹریولرز نے ٹکٹس لیے ہوئے تھے ہو ہیڈ ٹو فلائی فرام ہیترو اور گیٹوک جو ایئرپورٹس ہیں, تو اس کے اندر اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا ہم 10% جو ہم نے فلائٹس تھیں اپریل کے بیچ میں ہم نے کم کی تھیں, اور اب ہم اور زیادہ جو ہے کرتے جا رہے ہیں, اینڈ وی آر ناٹ ریلی گوئنگ ٹو آپریٹ ڈیورنگ دس سمر. حالانکہ اتنی زیادہ جو ہے اس دفعہ سمر میں, کیونکہ 2-3 سال کے بعد لوگ اب ٹریول کرنے کی ان کو آزادی ملی ہے, تو وہ کر رہے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی ہم یہ کر رہے ہیں.
لوگوں نے کتنی پلاننگ کی ہوئی,
بہت پلاننگ کی ہوئی ہے,
بکنگ کی ساری چیزیں کر رہے ہیں,
لیکن یہ ایک اچھی بات ہے. ان لائک ایئر کینیڈا, انہوں نے کہا جی کہ ہم ریفنڈ کر دیں گے لوگوں کو.
آپ وہ بھائی آپ ریفنڈ کر دیں گے, چلو صحیح ہے آپ کے,
لیکن برباد تو کر دیا نا اگلے کا
پلان. اس کے بعد پھر وہ جو دوسرے جو جہاں
ری بکنگ کریں گے,
آپ نے ہوٹلز وغیرہ بک کیے ہوئے, ریزورٹس بک کیے ہوئے,
وہ کیسے ریفنڈ کریں گے؟ وہ نہیں کریں گے. اور ماجد بھائی سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے, ناٹ ایوری بڈی بائز ٹکٹس فرام دا ایجنٹس, ناٹ ایوری بڈی بائز یا کہ ہائرز رومز ان ہوٹلز تھرو دا ہوٹل. لوگ بہت سارے یہ جو چیزیں ہیں یہ آن لائن کرتے ہیں, آن لائن انجن سے, تو وہ جو آن لائن انجن ہوتے ہیں اس کے اوپر آلریڈی لکھا ہوتا ہے کہ تمہارا پیسہ نان ریفنڈیبل ہے.
Exactly.
آپ کو پتا ایک دفعہ ہم امریکہ تک جا رہے تھے, میں اور میرا بیٹا, $1,000 تھا خالی, پھر دین وی تھاٹ let's not go to US, right? लेकिन वो जो है ना वो कोई बरल माचरों में उसका नाम नहीं लेती हूँ अब, एक ऑनलाइन वो थी, हमने ट्रेवल एजेंट से नहीं लिए थे अमेरिका के वो जो होते, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है यू विल लूज दिस, हम आपको एक रुपया भी नहीं देंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये दिस इज जो है वो लो रेट पे हम आपको दे रहे
क्योंकि वो भी आगे बाय
करते हैं, बाय करते हैं, तो वो कहते हैं जी हमने आपको एक रुपया भी हम वापस, सो यू विल लूज दिस $1,000
एक्जैक्टली।
तो वही बात है कि ब्रिटिश एयरवेज तो इनको दे देगी लेकिन वो होटल्स बिल्कुल नहीं देंगे, और क्योंकि आपने अगर ऑनलाइन किया तो फिर तो। वाशिंगटन पोस्ट की जनाब आज एक रिपोर्ट है, दिस इज वेरी वेरी इंट्रीगिंग एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसकी हेडलाइन है रिपब्लिकन स्टेट्स ट्राइंग टू यूज फेडरल कोविड 19 एड टू कट टैक्सेस। कैन यू इमेजिन, ये बहुत ज्यादा जब बाइडन साहब की गवर्नमेंट आई थी तो शोर मचा था कि भाई फेडरल टैक्स दो, फेडरल टैक्स दो कोविड 19 को अरेस्ट करने के लिए। तो इन्होंने, क्योंकि प्रेसिडेंट जो साइन करके ऑर्डर देते हैं ना, दैट इज एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, उसके फिर आप खिलाफ नहीं अमेरिका में जा सकते हैं क्योंकि ये सारा कुछ जो है ये पार्लियामेंट करती है, कांग्रेस करती है, लेकिन अगर वो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स यूज करते हुए वो अगर साइन कर दे तो फिर उसको एज अ कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू इनका कॉन्स्टिट्यूशन, आप नहीं कर सकते। लेकिन जो जीओपी लीडर्स हैं बहुत सारे, वो कह रहे हैं जी कि हमारे स्टेट्स के अंदर इतने हालात खराब हैं लोगों के कि ये सारे का सारा पैसा, और आपको पता है ये कितना है जो बाइडन साहब ने जो है ये साइन किया था, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स में था, बिलियंस ऑफ डॉलर था। यानी आप एक अंदाजा लगाएं कि सिर्फ इन द स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, सिर्फ फ्लोरिडा को 109.9 यानी कि 110 ही समझ लें, 110 बिलियन यूएस डॉलर मिला था कोविड का के कारोबार चलाने के लिए कि जी आपने दवाइयां लेनी है, लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज दें, और एक और दूसरा और तीसरा बूस्टर शॉट्स आपने लगाने। वो कहता है ये सारे का सारा पैसा लोगों को रिलीफ के लिए मैं दूंगा, उनके टैक्स कट कर रहा हूं मैं।
चलो हाँ, किसी का तो फायदा होगा।
हाँ, लेकिन लेकिन अब इस चीज ने एक लीगल अब बहस जो है अमेरिका में खोल दी है। उन्होंने कहा है कि जिस वक्त प्रेसिडेंट का ये आ जाता है तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, तो उसके अगर आप खिलाफ जाएंगे तो क्या आपकी स्टेट के ऊपर जो है मुकदमा किया जा सकता है, आपको सू किया जा सकता है, बिकॉज यू आर गोइंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, उसके ऑर्डर के अगेंस्ट आप जा रहे हैं। तो बहरहाल जी वो कहते हैं
जिस पर्पस के लिए दिया गया वो पर्पस यूज करें,
यूज करें आप, उसी के लिए आपने करना है। तो वो कहते हैं जी, वो जीओपी स्टेट्स में वो कहती हैं वी डोंट केयर, हमारे तो लोगों की हालत बहुत खराब है, उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, तो हम उनको टैक्स में कट,
दिस इज यूएसए,
या दिस इज यूएसए, तो हम उसको टैक्स में कट्स दे रहे हैं। और बाइडन साहब ने अभी $7 billion जो है वो दे दिया यूक्रेन को। पैन की कर रहे हो तुसी, थे बैठे हो ना जी। अच्छा जनाब, ये वाशिंगटन पोस्ट की आज एक दूसरी रिपोर्ट है, और इसके मुताबिक जो एंथनी ब्लिंकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साहब हैं वो अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ जो है मिल सकते हैं G20 की मीटिंग के अंदर। एंथनी ब्लिंकन साहब जो हैं वांग जी से बाली के अंदर मिलेंगे, जहां पे के लोग इकट्ठे हो रहे हैं इंडोनेशिया के अंदर, ये फॉरेन मिनिस्टर्स की G20 ब्लॉक ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज की हो रही है मीट, उसके अंदर ये मिलेंगे। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि उसी मीटिंग के अंदर, वो जो G20 की मीटिंग है उसमें रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जे लेवरोव भी आ रहे हैं, तो क्या आपकी मुलाकात उनसे भी होगी। व्हाइट हाउस ने इसका कोई जवाब अभी तक नहीं दिया है, लेकिन वहां पे अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा रिएक्शन जो है वो आ गया है। वो कह रहे हैं जी कि ये, क्योंकि उन्होंने कहा जी अच्छा हम पहले भी मिल चुके हैं इनसे, रशियन से जिनीवा में मिले थे, तो उसका कोई जवाब नहीं आ रहा। लेकिन लोगों ने इनसे पूछा है कि चाइना के साथ आप क्या बात करोगे भाई, आप क्या बात करोगे फिर से, आप तो हर वक्त कह रहे हो हम चाइना को कॉल कर रहे हैं और हम चाइना को कह रहे हैं कि भाई जो तुम ये यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हो, सपोर्ट ना करो, पीछे हटो, तो वो तो उससे पीछे नहीं हटा। फिर आपके जो सप्लाई चेन के इतने मसले आ गए, उसके ऊपर आपने उसको इतना ज्यादा कंडेम किया हुआ, उसने आपकी सारी सप्लाई चेन, तो क्या बात करनी है, व्हाट फर्दर विल यू टॉक। तो ये वो कहते हैं जी नहीं, हम क्या बात करेंगे, हम फूड सिक्योरिटी के ऊपर बात कर लेंगे और हम एनर्जी क्राइसिस के ऊपर बात कर लेंगे और हम रिक्वेस्ट कर लेंगे कि भाई जरा पुटिन को समझाओ।
वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, एक और प्रेडिक्शन, दिस इज विद शाजिया एंड माजिद, हमारी तो सारी प्रेडिक्शन सही होगी ना। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स
जी,
एंड आई एम नॉट गिविंग यू मंथ्स एंड इयर्स, विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स अवेयरनेस आ जाएगी लोगों में, दिस इज यूरोप, अमेरिका, कनाडा, कि भाई आप इतना पैसा जो है वहां पे यूक्रेन को दे रहे हैं, हमें आप दीजिए, हमारे टैक्स पेयर्स की मनी آپ ہم پہ استعمال کریں، نہ یہ کہ آپ کسی تھرڈ فورتھ ففتھ کنٹری کو دیں۔
اور یہ تو میں پچھلے دو مہینے سے کہہ رہی ہوں ٹروڈو صاحب کو، ٹروڈو صاحب کیوں اتنا ٹیکس کا پیسہ یوکرین کو آپ دے رہے ہو، ہمارے پہ خرچ کر لو، ہم کو دے دو $1 million، ہم اپنی مارٹگیج دے، چلو مجھے $1 million نہ دیں آپ، جس کے بیچاروں کے $2-3 لاکھ رہ گیا مارٹگیج کا، ان کو دے دو، ان کی جان چھوٹ جائے بھائی، مارٹگیج ان کی جان چھوٹ جائے، رائٹ۔ کچھ بچے جو ہیں بےچارے جن کو کہ کوئی $1-1.5 لاکھ جیسے اوس ایپ میں رہ گیا ہے، ان کو معاف کر دو، یہ ریلیف اپنے لوگوں کو دو بھائی، تم
اوس ایپ معاف کر سکتے ہیں آپ، بہت سارے ایجوکیشن جو ہے اس کو فری کر دیں آپ، بہت ساری جو ہیلتھ کیئر ہے اس کو فری کر دیں آپ، بہت ساری جگہوں پہ
کر سکتے ہیں، بیسکلی تو لوگوں کے جو ٹیکسز ہیں وہ تھوڑے نیڈز کو پوری کر دیں نا آپ لوگوں کو، لوگوں کو تاکہ وہ فری ہوتے جائیں، وہ قرضوں سے باہر آنا شروع ہو جائیں نا ماجد بھائی۔ تو یہ
ہمارے چھوٹے ملک کی طرح پاکستان میں یلو کیب نکال دی اس نے کہ بھائی آپ یلو کیب لیں، اور سارے ایجوکیٹڈ لوگ جتنے بھی تھے وہ جیسے یہاں اوبر ہے ویسے یلو کیب میں آپ دے دیں ان کو بھائی کہ آپ لیجیے آپ اپنا اپنا بزنس شروع کریں،
کر لو آپ، ہاں شروع کر لو، ہیں جی۔ تو بہرحال جی یہ تو ہم بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں، بہرحال جی تو اب دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ تو جناب یہ ہے، اچھا جی اس کے علاوہ جو ہے یو ایس جو ٹریجری سیکرٹری ہیں جینٹ یلن، وہ بھی اب ملاقات کر رہی ہیں چائنیز وائس پریمیئر لیو کے ساتھ جی، ان اے ورچوئل میٹنگ جو ہے وہ بات کریں گے، اور جی ان کی نہیں بات ہوئی ہے ان کی آپس میں، انہوں نے بات کی آپس میں، وہ دیکھیں اس کا ایکسپریشن دیکھیں، آج اب یہ بات ہو رہی تھی ان کی تو وہ دل میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کا دماغ ٹھیک ہے یو ایس اے، آپ ہمیں دم کھا رہے ہو، جاؤ ہم نہیں سنتے آپ کی بات۔ بہرحال جی آج ان کی ورچوئل میٹنگ جو ہوئی ہے اس میں وہ ہوئی ہے، تو یہ جی انہوں نے بڑا امریکن جو نیوز پیپرز ہیں انہوں نے کہا کہ اس نے جو ہے مس یلن نے بڑا اس کو کہا ہے چائنا کو کہ تمہارے بڑے ان فیئر جو ہیں ٹریڈ کے طریقے ہیں، اور تمہاری نان مارکیٹ جو اکنامک پالیسیز ہیں، اور جو تمہاری پالیسی رشیا کے اندر ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا اس کے بعد آگے انہوں نے کچھ نہیں لکھا امریکن نیوز پیپر۔ اچھا جی باجی نے یہ جو ہیں انہوں نے آنٹی نے ساری باتیں کہی ہیں، اچھا اس کے پھر جواب میں چائنیز جو وائس پریمیئر ہے اس نے کیا کہا ہے بھائی، وہ بھی تو لکھو نا نیوز پیپر میں، وہ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اس نے بہت باتیں سنائی ہیں اس کو،
ون سائیڈڈ نا
انہوں نے ان کو بہت باتیں سنائی ہیں جی، تو انہوں نے کہا کہ یہ صحیح نہیں چلے گا۔ تو پھر انہوں نے ان کو جو جب یہ آرٹیکلز آج امریکن پیپرز میں آئے تو ایکسپرٹس نے کہا کہ جناب چائنا وہ ملک نہیں ہے جس کو آپ بلی کر سکتے ہیں، یہ بلی کرنے والا کنٹری نہیں ہے۔ اچھا اور تو کوئی آپ کی، وہ کہتے ہیں امریکن ایکسپرٹس کہتے ہیں ہمیں وی آر 100% شیور کہ اس نے آپ کی کوئی بات نہیں مانی ہوئے گی، نہ تو اس نے یہ کہے گا کہ میں رشیا کی سپورٹ سے پیچھے آ رہا ہوں، نہ میں اس سے اس کی چیزیں نہیں خریدوں گا، یا میں اس کے اوپر سینکشنز لگنے دوں گا۔ آپ کم از کم ڈبلیو ٹی او کے جو مسائل ہیں، یہ جو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر ہی آپ بات کر لیتے، آپ نے کی نہیں جی اس کے اوپر نہیں کی باجی نے، بس باجی نے ڈانٹا ان کو۔
اچھا اچھا
ہاں ہاں ہاں
ٹھیک ہے،
بلکہ آنٹی نے، باجی تو ہماری کنگنا ہے، آنٹی نے ڈانٹا اس کو،
آنٹی نے
ڈانٹ دیا، بہت زیادہ ڈانٹ،
بےچارا میں دیکھ رہا ہوں اس کو بڑا خاموشی سے سن رہا تھا،
ہاں ہاں خاموشی سے سن رہا تھا بالکل۔ تو
بعد میں اس نے کہا نا کہ I don't understand what you say because I don't understand English.
نہیں اس کے بعد اس نے کہا جاؤ ادھر، بس تھوڑی ساری گل اتنے کٹا مار دے، جو تھی کٹا تقریر کی تھی نا ایلو کٹا، جیسے آپ کہتے ہیں نا اگر کوئی بری بات کرے اس کو زیرو سے ملٹیپلائی کرے، ہاں اس نے بھی یہی کیا، اس نے کہا میں نے زیرو سے صرف ملٹیپلائی نہیں کیا کٹا مارا ایسے کر کے، جاؤ وہ دیکھو چل شکل دیکھیں اس کی، وہ کتنے جوش و خروش سے بول رہی ہے، اور اس کی شکل آپ دیکھیں، وہ کہہ رہا ہے پہنے تو دل جلا لے، میں تیری غلطی مننی نہیں، جلا اور چیخو اور چیخو، کوئی بات نہیں بس اس نے ایسا ہی کرنا ہے۔ اچھا جناب یہ ساری کہانیاں ہو رہی ہیں، اچھا جی اینتھنی بلنکن صاحب نے ملنا ہے جی چینیوں کے ساتھ، ہمارے چینی بھائیوں کے ساتھ، ہم چائنا کے ساتھ کھڑے ہیں بھائی، اور یہ پھر ہماری جینٹ باجی جو ہیں آنٹی جو ہیں انہوں نے ان کو بہت سارا ڈانٹا، ٹھیک ہے جی، اچھا اس کے بعد جو ہے ابھی بھی ان کو چین نہیں تھا، اور یہ آپ خبر سنیں، یعنی ویسے ہم کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ پیار محبت کرنا چاہتے ہیں، یہ سپلائی چین کے معاملے ختم کرنا چاہتے ہیں، آؤ رل کے بیٹھیے، آؤ یہ کچھ جو ہے معاملات ٹھیک کریں، وار کو روکیں۔ ناسا کے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں بل نیلسن صاحب، یہ ایک جرمن جو ہے وہ اس کو بلڈ، ایک نیوز پیپر ہے بلڈ، اس کو دے رہے تھے انٹرویو، اس میں انہوں نے چائنا کو کریٹیسائز کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا چائنا ایک ایسی قوم ہے مجھے ڈر ہے, کیونکہ چائنا آج کل جو ہے اپنا وہ ساؤتھ آف مون جو ہے پول اس کے وہ مشنز کر رہا ہے, تیاریاں کر رہا ہے اس کی. وہ کہتا ہے جی چائنا جو ہے مجھے بہت برا لگ رہا ہے. وہ اس لیے برا لگ رہا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ چاند پہ بھی جا کے بیٹھ جائیں گے, اور ہم جب ناسا والے یا دوسرے ادھر جانا چاہیں گے تو وہ کہیں گے خلی ولی اب چاند پہ ہمارا قبضہ. Can you imagine? This is the head of NASA saying.
نہ مگر یہ تو آپ نے کل کہا تھا نا, آپ جب یہاں بیٹھے تھے کل
جی,
تو آپ نے کل کہا تھا نا کہ بھئی وہ چائنا پہ قبضہ وہاں جا کے پہلے قبضہ کر لیں گے, اور جو دوسری بھی تیسری قومیں آئیں گی
مجھے لگتا ہے سن لیا ان کو, انہوں نے سن لیا, مجھے لگتا ہے یہ ناسا کے ایڈمنسٹریٹر نے سن لیا. تو آج انہوں نے انٹرویو دے دیا ہے جی, انہوں نے میری بات سن کے انہوں نے دل پہ لے لی میری باتیں, حالانکہ پائن میں تو مزاق مجھ کر رہی تھا, انہوں نے دل پہ لے لی. انہوں نے جی یہ اتنا بڑا انٹرویو دے دیا, انہوں نے کہا آئی ایم سو وریڈ اباؤٹ چائنا کہ اس کے جو اسپیس ایمبیشنز ہیں وہ ایسے ہی ہیں, یہ جا کے جو چاند پہ بیٹھ جائے گا اور پھر اگر کوئی اور آنے کی کوشش کرے گا تو اس کو مار بگائے گا. اب چائنا کا تو اس کے اوپر بڑا کرٹیسزم آ گیا ہے, وہ کہتے ہیں یہ تم لوگ بھائی یہ کس طرح کی امریکیوں کتنی تم لوگ ریڈیکولس باتیں کرتے ہو بھائی, تم لوگ کتنی ریڈیکولس باتیں کرتے ہو. بہرحال جی جو یہ زاؤ لیجین ہیں چائنیز فارن منسٹر, انہوں نے کہا جی کہ یہ انتہائی ارریسپانسبل اسٹیٹمنٹس ہیں, اور یہ اس میں آپ کو ذرا تھوڑی جو ہے ذرا تمیز کریں اس طرح کے بےہودہ اسٹیٹمنٹس آپ نہ دیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جناب, الجزیرہ کی آج ایک رپورٹ ہے اور اس کے مطابق جو حج ہے اس دفعہ ماشاءاللہ اچھی طرح, یعنی فل فلیش تو نہیں لیکن بہت اچھی طرح سے واپس آ رہا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہی ہے پچھلے دو سال میں تو بہت ہی کم ہو گئے تھے. لاسٹ ایئر 60,000 تھے, اس سے جو ایک سال پہلے تھا صرف 10,000 لوگ جو تھے ان کو سلیکٹ کیا گیا تھا. اس دفعہ جو منسٹری آف انٹیریئر ہے سعودی عربیہ کی, وہ کہہ رہی ہے جی کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ تقریباً 1 million لوگ جو ہیں اس دفعہ آئیں گے, اور یہ کافی عرصے کے بعد جو ہے یہ اتنی بڑی جو ہے نمبر میں لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ. تو وہ کہہ رہے ہیں لیکن کہ ہم نے ایک ڈیولپ کیا ہے توکلنا ایپ جو ہے وہ ہم نے ڈیولپ کیا ہے, اس کے اوپر جائیں اور دیکھیں کہ کس کس جگہ پہ اور کس کس موقع پہ آپ سے جو ہے پروف آف ویکسینیشن بھی پوچھا جا سکتا ہے اور ماسکنگ کی ریکوائرمنٹس بھی ہیں, حالانکہ بہت ساری جگہوں پہ ہم نے ختم کر دی ہیں لیکن کچھ جگہوں پہ یہ رہیں گی. تو یہ جو حج پہ جا رہا ہے بھائی یہ توکلنا ایپ جو ہے ڈاؤن لوڈ کریں اور اس میں ساری ریکوائرمنٹس دیکھیں. اچھا جی, انڈیا ٹوڈے کی آج ایک رپورٹ ہے, اور کل ہم نے آپ کو بتایا تھا وہ جو فلم آ رہی ہے کالی, جس کے اندر وہ کالی ماتا جو ہے ان کو وہ سگریٹ پیتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے, اور پیچھے جو ہے وہ ایل جی بی ٹی کا وہ جو ہے پرائڈ پریڈ کا وہ جھنڈا ہے. تو اس میں آج جو ہے ہندو سیئر جو ہے ایک یہ انہوں نے تھریٹن کیا ہے جو فلم میکر جو ہیں لینا منی میکالائی کو, کہ انہوں نے کہا جی یہ جو تمہاری فلم آ رہی ہے یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا, یہ جو ہیں یہ راجو داس یہ مہند ہیں ہنومان گری ٹیمپل کے ایودھیا کے اندر. انہوں نے کہا جی جب نوپور شرما تو کوئی چیزیں کہتی ہے تو اس میں تو آپ آگ لگ جاتی ہے ہندوستان میں بھی اور دنیا میں بھی, تو اب جو ہے یہ ہمارے جو سنتن دھرم کو جو ہے کر رہے ہیں انسلٹ کر رہے ہیں, تو کیا چاہتے ہو کہ تمہارا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا جائے. انہوں نے یہ آج کہہ دیا کہ تمہارا بھی سر تن سے جدا کر دیا جائے کیا. تو انہوں نے بڑا کنڈیم کیا اس مووی کو, انہوں نے کہا کہ ہمارے ہندو گاڈز اور گوڈیسز جو ہیں ان کو اس طرح سے انسلٹ کرنے کا تم کو کوئی حق نہیں ہے. تو یہ اب پھر یہ تو جینوسائڈ کی کال سمجھی جا رہی ہے, تو یہ بڑی خطرناک. دا وائر کی ایک سٹوری ہے جی, اینڈ دس از ریٹن بائی سبا گرمت, اور اس کی ہیڈ لائن ہے جسٹس سسٹم کانٹ سنک لوور دین دس, ججز ایکسپرٹس آن زبیرز بیل ڈینائل اینڈ لیگل لیپسز. اچھا یہ ہم آپ کو محمد زبیر جو ہیں آلٹ نیوز کے جو ایڈیٹر ہیں ان کی ہم نے بہت دنوں سے آپ کو خبر بتا رہے ہیں کہ اس کو پکڑا ہوا ہے, اور اس کو جو ہے صرف ایک رپورٹنگ کرنے کے لیے اس کے اوپر جو ہے مقدمے چلائے جا رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو ملک کے اندر یہ جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس سے زیادہ اور کیا گر سکتا ہے کہ ایک جرنلسٹ کو بولنے کی آزادی نہیں ہے. اس کو جو ہے بیچارے کو دلی پولیس نے ایک ٹویٹ کے اوپر کیا تھا جو کہ ایک نام معلوم ایک اس سے آئی تھی, جس کا کہ اب یہ وائر والے کہتے ہیں ہم نے اس کی انویسٹیگیشن کی ہے تو پتا چلا ہے کہ جی बीजेपी का एक हैंडलर था, उसने ये ट्वीट जो थी ये सामने लेकर आए थे और वो कह रहे थे कि ये कॉन्स्टेंटली मुल्क के खिलाफ बोल रहा है। लेकिन अगर ये ऐसा होता तो ना सिर्फ मुल्क की एजेंसीज और दुनिया की जो न्यूज एजेंसीज हैं वो इसके ऊपर आवाज ना उठाती अगर इसने ऐसे किया होता। जुबेर के जो काउंसल हैं एडवोकेट सौतिक बैनर्जी, उन्होंने कहा मैं इतना ज्यादा शॉक्ड हूं क्योंकि कुछ सेक्शन ऑफ प्रेस में कुछ लोगों ने कहा है कि जो दिल्ली पुलिस के डीजीपी हैं मल्होत्रा साहब, उन्होंने ये इंफॉर्मेशन लीक की थी। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि किस लॉ को ये लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि अंडर द लॉ आप ये चीजें लीक नहीं कर सकते हैं पब्लिक को या मीडिया को। तो ये इन्होंने कैसे किए? अच्छा, डीसीपी मल्होत्रा साहब जो हैं, ये जब बहुत ज्यादा ये हंगामा हो गया ना इसके ऊपर कि जी डीसीपी ने अगेंस्ट द लॉ चीजें कैसे, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो सिर्फ डिपार्टमेंटल यूज के लिए होती हैं, आपने नहीं, तो ये उसने डिनाई कर दिया। उसने कहा नहीं नहीं, ये तो मैंने ये ऐसे तो बातें कही नहीं है, तो मैंने मेरे ख्याल में ओवर हियर किया चीजों को, ये ठीक नहीं है। द वायर वाले कहते हैं जब हमने अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन की तो हमें पता चला कि नो ही डिलिबरेटली सेड इट, डीसीपी मल्होत्रा, और उसने वाकई सारी इन्फॉर्मेशन लीक की जिससे कि इतना बड़ा मुद्दा बना, जिससे कि उस बेचारे जर्नलिस्ट जुबैर के ऊपर इतना अजाब आया और उसको पकड़ा गया। तो ये सारी जो है बातें हैं। अच्छा जनाब, दुबई बाउंड एक इंडियन फ्लाइट जो थी 138 पैसेंजर्स को लेकर जा रही थी, स्पाइस जेट फ्लाइट B737 एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग फ्लाइट SG11, अचानक से ये जब कराची के ऊपर से गुजर रही थी तो इसके अंदर बहुत सारी खराबी, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए। तो इन्होंने फिर पाकिस्तान को ये कराची जिना जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो है कंट्रोल टावर, उसको कांटेक्ट किया, तो उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे इंडियन एयरलाइन ने उनको वहां पर उतरने दिया। अब इसके ऊपर जो है वो काम किया जा रहा है, पाकिस्तानी इंजीनियर्स जो हैं वो फॉल्ट को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जब इनको क्लियरेंस मिलेगी तब जाएंगे। लेकिन पैसेंजर्स जो थे उनको उतरने के लिए जो इजाजत नहीं दी थी, कुछ को फिर थोड़ी देर के लिए नीचे आने दिया क्योंकि बहुत ज्यादा ये लंबा हो गया। लेकिन बाकी लोगों को कहा कि आप लोग बैठे रहे, फिर उनको रिफ्रेशमेंट्स वगैरह दी, वो किया और फिर इनको कहा जी वापस आप बैठ जाओ और रिफ्रेशमेंट्स आप अपनी ले लो। तो अब वो कह रहे हैं कि अगर तो ये रिपेयर हो गया फिर तो ठीक है, अगर टाइम ज्यादा लगा तो फिर इंडिया से ही एक रिप्लेसमेंट एयरक्राफ्ट आएगा कराची में, दूसरा एक आएगा खाली होगा वो, उसमें ये सारे लोग बैठ के अब जाएंगे दुबई जाएंगे और ये एयरक्राफ्ट जो है ये पूरी तरह जब तक ठीक नहीं होएगा इसको फिर उड़ने नहीं अब दिया जाएगा यहां से, तो हो जाएगा फिर जा सकता है ये। तो बस वही बात है, वो आरफाबाजी भी जो आज कर रही थी, जिसको अल्लाह रखे इसको कौन चके, बच गई ये लोग भी। इट वाज अ ह्यूज वो जो थी टेक्निकल फॉल्ट थी और वो आगे और फ्लाई अगर करते तो क्रैश हो सकता था ये जहाज, क्योंकि आपको पता ही है कि फिर वो समंदर से गुजर के वो जाते हैं सारे। तो वो इन्होंने कहा कि हम क्या उतर सकते हैं कराची एयरपोर्ट पे, तो उन्होंने कहा आप उतार लें। पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ जो हैं जी जनाब हमारे कमर बाजवा साहब, वो कुछ दिन पहले दोहा में थे और उन्होंने वहां पे दोहा की जो गवर्नमेंट है उसको कहा है, अमीर जो है शेख हमद बिन तमीम उनको कहा है कि भाई पाकिस्तान के बड़े माड़े हालात हैं जो कि वो ठीक नहीं हो सकते जो हालात चल रहे हैं वहां पे, तो हमको जो है पावर के बड़े मसले हैं तो आपसे LNG चाहिए है। तो ये मामले जरा जो है वो सीधे करके आए थे। तो अब खबर आई है जी कि अब प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं और अब प्राइम मिनिस्टर साहब शेख हमद के साथ मिलेंगे वहां पे और उनको वो कहना चाहते हैं कि जी पाकिस्तान जो है उसको पहली जो गवर्नमेंट थी आपकी PTI की हमारी, उसको तो आपने 10.2% पे ब्रेंट ऑयल दिया था, तो हमारे लिए आपने रेट क्यों बढ़ा दिए, 13.2 पे क्यों आपने कर दिए, तो आपको हमको भी चाहिए, तो हमको भी सस्ता जो है आप ये दें, क्योंकि पाकिस्तान को पहले शायद जो है वो वन स्पॉट LNG कार्गो जो था वो हर वीक आता था, अब वो कहते हैं नहीं जी इतनी ज्यादा जरूरत बढ़ गई है कि 4 spot LNG कार्गोज हमको पर मंथ जो है वो चाहिए है। और फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल साहब ने भी कहा है कि हमको पता चला है कि कतर हमको लो प्राइस पे जो है वो ऑयल देगा, लेकिन जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि जो मिडल ईस्ट से ऑयल आता है वो दैट इज वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज इट इज वेरी वेरी रिफाइंड, क्योंकि उन सबके मुल्कों में अपनी रिफाइनरीज हैं, तो वो बिल्कुल टू द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स, बिल्कुल यानी खीर की तरह उसको जो है बना देते हैं उसको ऑयल को, इतना गुस्सा, इसीलिए आप देखें गाड़ियां बहुत कम खराब होती हैं मिडल ईस्ट में। तो जो रशिया ऑयल आपको दे रहा था शायद वो इतनी रिफाइंड क्वालिटी का नहीं था, बट दैट इज एक्चुअली द चीपेस्ट ऑयल, क्योंकि अगर ऐसे ना होता तो सारा यूरोप जो है फिर वो मिडल ईस्ट से ऑयल लेता, रशिया से ना अभी तक ले रहा होता। ये तो अब लड़ाई हुई है तो वो अब कतर की तरफ एंड यू नो दे आर लुकिंग एट सऊदी अरेबिया एंड UAE एंड ऑल दैट, तो ऐसे है। बहरहाल जी ये कहते हैं जी कि सस्ता हमें मिलेगा कतर से, पॉसिबल नहीं है। बहरहाल एनीवेज, अच्छा जी अभी आपको आरफाबाजी ने बताया कि जो कराची यूनिवर्सिटी का कन्फ्यूशियस जो इंस्टीट्यूट था उसके अंदर जो 3 चाइनीज को मार दिया था उसका जो मेन सस्पेक्ट है आज वो कहते हैं जी हमने उसको पकड़ लिया है, ये मास्टर माइंड था। اور اس کا نام ہے داد بخش, اور کہتے ہیں جی اس کا تعلق جو ہے وہ بلوچستان لبریشن آرمی سے ہے, لیکن اس نے صرف ماسٹر مائنڈ کیا تھا. ہم نے یہ آپ کو پوری خبر سنائی تھی کہ جو سوئسائڈ بومنگ کی تھی وہ ایک لیڈی نے کی تھی جس کا نام شیری بلوچ تھا, جس کا ہسبینڈ ڈاکٹر تھا, اینڈ شی ہرسیلف بلانگ ٹو اے ویری گڈ فیملی اینڈ شی واز اے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ دیئر. تو بہرحال جی اس کو پکڑ لیا اور وہ کہتے ہیں جی اس کو لیڈ کریں گے اب باقی چیزوں کو انفولڈ کرنے کے لیے. تین چائنیز ٹیوٹرز اور ایک پاکستانی جو ڈرائیور تھا وہ اس میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی انفارچونیٹلی, اور باقی کے جو تین چائنیز ٹیوٹرز اور رینجرز کے کچھ لوگ جو تھے وہ زخمی ہوئے تھے. بہرحال یہ کافی بڑی جو ہے کراچی پولیس کی بریک تھرو جو ہے مانی جا رہی ہے. فواد چودھری صاحب نے جی آج جو کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پنجاب کے چیف منسٹر حمزہ شریف جس کے بارے میں فیاض بھائی نے بھی کہا تھا کہ بہت ہی لمیٹڈ ان کے پاس جو ہیں وہ پاورز ہیں, تو ان لمیٹڈ پاورز کے ساتھ انہوں نے اناؤنس کر دیا تھا کہ جو 100 یونٹس یوز کرے گا جو بندہ اس کو ہم مفت دیں گے, اور تقریباً 9 ملین کے قریب جو لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اور یہ اور وہ ہے, آج فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں یہ دس از اے وائلیشن آف کورٹ آرڈرز بفور بائی الیکشنز جو کہ بھی پنجاب میں آنے ہیں, کیونکہ آپ اس سے پولیٹیکل مائلج لینا چاہتے ہیں. تو انہوں نے ایز اے ریزلٹ ایک لیٹر لکھا ہے سپریم کورٹ کو, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ان نیسسری پاورز اپنی یوز کر رہے ہیں جو کہ ان کے پاس ہیں نہیں, اور یہ فیک پیکج دے رہے ہیں, اور جیسے یہ الیکشنز ہو جائیں گے تو یہ ہٹا لیں گے اپنا یہ, تو یہ اب فری اینڈ فیئر الیکشنز کو انفلوئنس کرنے کی ان کی کوشش ہے, تو اس چیز کے خلاف جو ہے ایکشن لیا جائے. پی ڈی وی کے وائس چیئرمین جو ہیں شاہ محمود قریشی صاحب جی آج وہ کھل کے سامنے آئے ہیں. ان کے اوپر بہت دنوں سے یہ آ رہا تھا کہ آپ پی ٹی آئی کو بہت زیادہ کریٹیسائز کر رہے ہیں, اور آپ جو ہیں شاید ہو سکتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ آپ ایکسکیوز می پھر سے شاید چھوڑ کے پی ٹی آئی کو چلے جائیں گے اور آپ پی 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 کو جوائن کر لیں گے. انہوں نے کہا جی کہ ایم این اے راجہ ریاض جو ہیں ان کی ملاقاتیں ہوئی تھیں زرداری صاحب کے ساتھ, اور انہوں نے کہا تھا کہ شاہ محمود قریشی واپس پی 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 میں آئے گا. میرا جوتا آئی سے مائی شو گوز ٹو پی پی پی, میرا جوتا شاید جائے گا ادھر, میں تو بالکل نہیں جانا چاہتا ہوں, اور جو ہے ہم نے میں تو ان کے ساتھ ہی کھڑا رہوں گا, میں وائس چیئرمین ہوں پی ٹی آئی کا تو میں کیسے جاؤں گا. یہ ایک پریس کانفرنس جو تھی یہ اپنا وہاں پہ ملتان کے اندر ایڈریس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میرا سارا خاندان جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, ہم ریئل آزادی کے لیے اور ملک کو سلیوری سے نکالنے کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں, اور اس کے لیے ہم خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. انہوں نے کہا جی کہ میں نے بتایا ہے جو ای سی پی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو کہ جتنے بھی یہاں پہ یہ جو لوٹرز ہیں جن کو کہ عوام جو ہے ایٹ لیسٹ ریجیکٹ کر چکی ہے, لیکن یہ جو 20 کانسٹیٹیوئنسیز کے اندر جو الیکشنز ہونے والے ہیں یہ لوٹرز اس کو جو ہے رک کرنے کی کوشش کریں گے, انکلوڈنگ پی پی 217 جو کہ ان کا جو ہے حلقہ ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ میں ان کو بتا رہا ہوں ای سی پی کو بار بار کہ آپ ان کے اگینسٹ ایکشن لیں کیونکہ یہ سب لوٹے ہیں, اور ان کو لوگوں نے پھر وہاں پہ کہا کہ آپ بھی ایسا ورڈ یوز کر رہے ہیں, کہتے ہیں جب دنیا ساری ان کو لوٹا کہتی ہے تو اگر میں کہوں گا تو کیسے ہوگا, کیونکہ لوگوں کو پتا چل گیا کہ اب یہ لوٹے کسی جگہ پہ فٹ نہیں ہوتے ہیں, تو اس لیے ان کو کچھ ملے گا نہیں, تو اس لیے یہ ریگنگ کرنے کی کوشش کریں گے. عمران خان صاحب نے کہا ہے جی کہ میری پارٹی اور میرے خلاف کانسٹنٹلی جھوٹے مقدمے ڈالے جا رہے ہیں, میرے لوگوں کو ہراس کیا جا رہا ہے, اور اگر آپ نے یہ سب کچھ جو انکمبنٹ گورنمنٹ ہے اس کو کہا کہ اگر آپ نے یہ سب کچھ بند نہ کیا تو میں ان تمام لوگوں کو جن کو کہ انڈر دا اسٹیٹ ایکٹ جو ہے جو کہ ہم پردے میں رکھتے ہیں چیزیں جو کہ میں نے بتائی نہیں ہے, نام ریویل نہیں کیے ہیں, ایک ایک بندے کا نام جو اس سازش میں شامل تھا جس نے کہ میری گورنمنٹ ہٹائی ہے اس سب کے نام جو ہے میں بتا دوں گا, کیونکہ یہ بٹریل میرے ساتھ نہیں ہے, میری گورنمنٹ کے اگینسٹ نہیں ہے, اس ملک کے اگینسٹ تھا. ایک سٹنگ گورنمنٹ کو آپ نے جو کہ ترقی کی راہ پہ ملک کو ڈالے ہوئے تھی اس کو آپ نے ہٹایا ہے, یہ لوگ جو ہیں صرف این آر او 1 اور این آر او 2 کے پیچھے رہتے ہیں, اور میری گورنمنٹ انہوں نے اس لیے ہٹائی تھی کہ یہ کہتے تھے کہ بے تحاشا انفلیشن اور مہنگائی ہو گئی ہے, تو اب ان کا آپ حال دیکھ لیں کہ میری گورنمنٹ سے 10 گنا زیادہ انہوں نے وہ کر دیا ہے, تو یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے, یہ تھیفز ہیں, یہ ٹریٹرز ہیں, لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے. میرا ابھی جو حال کا بھی جو ابھی ریلی ہوئی ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ لوگ کس طرح باہر آئے ہیں, اگر وہ میرے خلاف ہوتے تو وہ میرے ساتھ نہ کھڑے ہوتے, تو میں اگر یہ نیشن کو جو ہے اور ہم کو بھی اگر دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کریں گے تو پھر میں مجھے دے ول فورس می ٹو اسپیک. چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطیہ بندیال نے جناب آج کہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ اپنا کانشس بیچ دیتے ہیں اور اپنی وفاداریاں بدل لیتے ہیں, وہ جو یعنی اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے وہ جو 20 پی ٹی آئی کے ڈسیڈنٹ ایم این ایز تھے جنہوں نے ایم پی ایز تھے جنہوں نے کہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے اور حمزہ شہباز جو ہیں ان کے الیکشن کے اندر پارٹیسپیٹ کیا تھا اس کے بارے میں یہ بات کر رہے تھے, تو وہ کہنے لگے کہ یہ ایسے کیسے چلے گا. ہوا یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ تھی اس نے کہا تھا کہ جو لوگ اپنی پارٹی کے जो होता है प्लेटफॉर्म जो होता है उसके अगेंस्ट चलते हैं और डिसिडेंट जो वॉइस हो जाती है पार्टी के अंदर उसको फिर जो है वो डिफेक्शन में वो चले जाते हैं। लिहाजा उन्होंने क्योंकि वो एक्सप्लेन कर रहे थे ये जो सारा आर्टिकल है आर्टिकल 63A उसकी सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेनेशन दे रहे थे तो वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो डिफेक्टेड हो जाते हैं फिर तो वो फिर ना तो वोट दे सकते हैं और उनके वोट अगर वो दें भी तो उसकी कोई हैसियत नहीं होती है। तो एज अ रिजल्ट ECP ने अनाउंस किया था कि जी आप जो हैं जो 20 डिफेक्टेड PTI के मेंबर्स हैं वो अब ये जो अब नेक्स्ट इलेक्शन चीफ मिनिस्टर के लिए पंजाब में हो रहे हैं उसमें हिस्सा नहीं डाल सकते हैं। तो बहुत सारे वही जो 20 MPA थे वो फिर अब गए थे उसके अंदर उन्होंने कोर्ट के अंदर जो है वो डाली थी पिटीशन डाली थी कि क्यों हम क्यों नहीं बैठ सकते क्यों नहीं कर सकते। तो इन्होंने अता बंदियाल साहब ने कहा है कि नहीं आप नहीं कर सकते हैं और आप बिल्कुल वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे जो अब फ्रेश इलेक्शन हो रहे हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब के लिए तो आपको कोर्ट का जो है आपको करना पड़ेगा। और ECP जो है उसको भी पहले भी कहा था कोर्ट ने कि आप रूल्स फॉलो करेंगे जो उसने किया और उनको जो है वो कर दिया साइडलाइन कर दिया कि आप वोट नहीं देंगे और अब भी कोर्ट ने कहा है कि ये ECP जो है इसके ऊपर अमल करें। NCOC जो है यानी कि नेशनल कमांड एंड कंट्रोल जो पाकिस्तान के अंदर है उसने कहा कि जी ईद भी आ रही है और कुर्बानी भी आ रही है तो उसके लिए हमने नई गाइडलाइंस दी हैं और उस उन्होंने कहा था कल भी कहा था NCOC ने कि BA5 सब सर्वेंट ऑफ जो वेरिएंट ऑफ ओमिक्रॉन है वो फैलता जा रहा है तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ईद उल अदा जो जुलाई 10 को होने वाली है और जो ईद प्रेयर्स उससे पहले होंगी तो उसके अंदर आपने तमाम SOPs जो हैं उनको फॉलो करना है और प्रेयर्स अगर इनसाइड द मॉस्क हैं तो खिड़कियां दरवाजे खुले रखें और हम ये कहते हैं कि एक एक जगह पे जो कि हम मॉनिटर कर सकते हैं SOPs के लिए वहां पे ही आप जो है प्रेयर्स करें डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे ना करें। तो यानी कि अब स्ट्रिक्टनेस जो है खासतौर पर कराची में वापस आ रही है। बॉलीवुड के आपको पता ही है कुछ मशहूर हो गए हैं कुछ सालों से राजकुमार राव जो एक्टर हैं वो कहते हैं कि बॉलीवुड के अंदर बेतहाशा नेपोटिज्म है बट दैट डजंट मीन कि आपको कोई पीछे खींच सकता है जैसे कि मेरे क्लासमेट्स जयदीप अहलावत और जो है प्रतीक गांधी उनको अब आप देखें कितनी जो है OTT जो प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं उस पर उनको चांसेस मिल रहे हैं मैं खुद भी मुझे भी मिल रहे हैं। आपको पता ही है कि इनको बहुत ज्यादा फेम मिला था गैंग्स ऑफ वसेपुर और तलाश जैसी फिल्मों में जब इन्होंने काम किया था तो वो कहते हैं जी कि टैलेंट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ नेपोटिज्म है इंडस्ट्री में लेकिन आपका टैलेंट जो है आपको फिर पीछे नहीं रहने देता है अगर आपका ऐसा टैलेंट है। फराह खान जो है जी वो एक इवेंट पे अपीयर हुई जिसका के नाम था स्वयंवर मीका की वोटी मीका की वोटी उसके ऊपर ये आई हुई थी तो इस पे लोगों ने पूछा कि आप जब आपकी एज ज्यादा हो गई तो आपके पेरेंट्स ने नहीं कहा आपको कि शादी करो तो आपने क्यों नहीं आपने वक्त पे की तो उसका जवाब इन्होंने देते हुए कहा जी कि शादी की कोई एज नहीं होती है और उसके लिए कोई स्टैंडर्ड्स भी नहीं है जब आपको लगे कि आपकी जिंदगी में ऐसा आदमी है जो कि राइट है फिर आप करें। इसके अंदर मीका सिंह भी आए हुए थे तो इन्होंने लेकिन अपने भी एक्सपीरियंसेस कुछ शेयर किए उसने कहा जब मेरी शादी फिल्म एडिटर शिरीष कुंदर के साथ हुई थी तो मैं इतना ज्यादा तंग आ गई थी क्योंकि बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं शादी के बाद के शादी के पहले साल में ही मैंने सोचा था कि मैं इसको छोड़ दूंगी लेकिन फिर जो है हमारी गाड़ी चलती रही। सिल्वेस्टर स्टालोन आपको पता ही है कि बॉलीवुड की फिल्म एक ही में उन्होंने काम किया है लेकिन एटलीस्ट उन्होंने किया और फिर उनका प्यार जो है बॉलीवुड से बहुत ज्यादा पड़ गया था। ये आए थे 2019 की एक फिल्म में इन्होंने कैमियो किया था कमबख्त इश्क में और उसके अंदर अक्षय कुमार और करीना कपूर थे तो अब उनका चूंकि प्यार पड़ गया था बॉलीवुड से तो जब Race 3 आई 2018 में तो ये कर रहे थे इसको भी प्रमोट लेकिन इन्होंने क्या किया इन्होंने कहा कि जी बड़ी जबरदस्त फिल्म है और इसके अंदर जो है सल्लू भाई हैं सलमान खान है लेकिन ये जो पोस्टर दिखा रहे थे और जो शेयर कर रहे थे वो सनी वो उसका था बॉबी देओल का था तो फिर इनको बताया गया कि नहीं नहीं ये मिस्टेक है ये सल्लू भाई नहीं है तो उन्होंने अपनी मिस्टेक तो ठीक की लेकिन फिर भी उन्होंने नीचे लिखा कि आई एम स्टिल नॉट श्योर कि ये सलमान खान है या बॉबी देओल है तो ये स्केप्टिकल रहे। तो बहरहाल जी ये बड़ा लोगों ने आज जो है इसको इनको याद किया है। एंड जनाब इंग्लैंड बीट इंडिया बाय 7 wickets इन द सेकेंड टेस्ट एट एग बस्टन में जो चल रहा था इंग्लैंड को दिया गया था 378 का टारगेट इन्होंने जो है वो उसको किया 378 for 3 पे और इसमें जो रूट 142 नॉट आउट रहे और जॉनी बेयरस्ट्रॉ जो है वो 114 नॉट आउट रहे, तो 269 रन की इनकी पार्टनरशिप थी। और वो कहते हैं जी कि जबरदस्त किस्म का इन्होंने रिकॉर्ड जो है वो सेट किया है। और अब जो इनकी सीरीज है इंग्लैंड और इंडिया की, वो दो दो से बराबर पे है।
वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया
हो गया बहुत ज्यादा।
पहली इनिंग में उन्होंने बड़ा अच्छा स्कोर किया
पहली में
इंडिया ने, और उनको इंग्लैंड को जो है 270 सम ऑन पे आउट कर दिया, तो दे वर इन वेरी गुड पोजीशन, सो दे बिकेम वेरी ओवर कॉन्फिडेंस।
तो बस जी अब सीरीज जो है 2-2 पे खड़ी है, 5 जो मैच सीरीज है, तो अब डिसाइडर में देखेंगे कि कौन ये जीतेगा। एंड जनाब बाबर आजम जो है आज दुबई के अंदर थे, क्योंकि जो पाकिस्तान की टीम है वो अब श्रीलंका जा रही है मैचेस खेलने के लिए। यहां पे जो है वो पाकिस्तान नंबर 5 पे है आईसीसी की रैंकिंग पे और श्रीलंका 7th पे है, तो इनके मैचेस गाले में शुरू हो रहे हैं, जुलाई 16 से 20th के में वहां पे होंगे, और फिर जो दूसरा होगा कोलंबो में होगा जुलाई 24 से 28 में। लेकिन दुबई में जब ये थे तो यहां पे जर्नलिस्टों ने इनको घेरा और इनसे क्वेश्चन किए, तो वहां पे बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि हमारे फास्ट बॉलर्स जो हैं उनकी एबिलिटी है कि वो किसी भी डिफिकल्ट कंडीशन में खेल सकते हैं, और इसी तरह जो हमारे बैटर्स हैं उनका भी अब ऐसा एक्सपीरियंस है कि किसी भी कंडीशन में खेल सकते हैं, तो मुझे लगता है कि हम श्रीलंका को टफ फाइट देंगे। एंड जनाब 3-time डिफेंडिंग चैंपियन नोवैक क्योंकि वैक्सीनेशन उन्होंने ली नहीं है, नोवैक जोकोविच जो है वो बड़ी मुश्किलों से जो है उन्होंने हराया इनको जॉनिक सिनर को विमिल्डन के अंदर, और सेमीफाइनल्स में अब ये पहुंच गए हैं, और अब इनका मुकाबला जो है हो सकता है ये जो 9th सीट कैमरों नॉरी हैं इनके साथ। आपको पता ही है इनका नोवैक जोकोविच का कि उन्होंने 6-time विमिल्डन चैंपियनशिप्स जीती हैं, सिर्फ 2006 में एक दफा लूज की थी, और 20-time ग्रैंड स्लैम चैंपियन है ये। तो ये अब जो है पास पहुंच रहे हैं वो जो है ना उसका जो मैक्रों के जो वो हैं उसके वो उसके
रैकेट
की तरफ जो है ये नहीं सॉरी क्या है नहीं मैक्रों तो फ्रांस के वो हैं वो क्या नाम था उनका बड़े मशहूर थे जिमी कॉनर्स थे वेरी वेरी फेमस जो वो जो बहुत बिग नेम था
समझ गया अभी क्या बात
तो वो उसके रिकॉर्ड के जो है ये पास अब जो है वो पहुंच रहे हैं। एंड जनाब ट्रंटो का वैसे कोई हाल नहीं है जी, जब वो स्टडीज आती हैं तो वो क्या आती हैं, वो आती हैं स्टडीज के जी मोस्ट लिवेबल सिटी है और बहुत जबरदस्त यहाँ पे, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें देखते हैं ना, उसमें एक चीज इंफ्रास्ट्रक्चर भी होती है बहुत जबरदस्त जो है ट्रंटो के पास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपको पता है कि छोटा सा मुल्क है कतर, और इस साल का जो नवंबर दिसंबर में फीफा होने वाला है वो सिर्फ कतर में हो रहा है, ठीक है जी, और उन्होंने मैंने आपको बताया था कि कोई 10 स्टेडियम बनाए हैं, उस 10 ये देखें जी जरा ये स्टेडियम की शक्लें देखें, ये 10-10 स्टेडियम जो है ये तो हमें तो आपको अभी 4 ही दिखा रहे हैं, लेकिन ये सारे डिफरेंट थीम्स पे उन्होंने बनाए हुए हैं, और हर स्टेडियम जो है उसके अंदर एटलीस्ट जो है 45,000 के करीब से ज्यादा के जो है वो स्पेक्टेटर्स बैठ सकते हैं। अच्छा जी, अब 2026 की जब बिड्स आई तो ये मिली इसको कनाडा को, यूएसए को और मेक्सिको को, ये तीन कंट्रीज जो है मिलकर करेंगे ये जो मैचेस 80 मैचेस होंगे, उस 80 मैचेस में से सिर्फ 10 जो हैं टोरंटो ने करने हैं, और टोरंटो को वक्ता पड़ा हुआ है। टोरंटो ने जब बिड किया था जी तो वो कहते हैं जी कि उस वक्त जो हमारी एक्सपेक्टेड कॉस्ट थी वो अब थी काफी कम, और अब जो है इन्फ्लेशन के होते हुए $300 मिलियन को टच कर
गया है, 307 मिलियन टू बी एग्जैक्ट,
और वो कहते हैं विच मीन $60 मिलियन पर गेम। तो वो कहते हैं जी कि दिस हैज इंक्रीज $10 मिलियन ड्यू टू इन्फ्लेशन, और वो जो है वो कहते हैं जी कि ये 3,300 जॉब्स भी वैसे तो क्रिएट करेगा और हमारे GDP जो है उसको भी बहुत ज्यादा ये फायदा देगा, लेकिन फिर भी जो है हमारे लिए जो है मुश्किल हो रहा है क्योंकि टैक्स पेयर्स का ये मनी है।
2/3 जो है वो तो फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट
दे रहे हैं, तो वो कह रहे हैं जी एटलीस्ट $184 मिलियन जो है वो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट देगी, टोरंटो जो है 77.1 मिलियन ही अपनी जेब से डालेगा। तो वो कहते हैं जी जब हमने इनको कहा था कि हम ये करेंगे उस वक्त $30 to $45 मिलियन का ये था, विच इज नाउ टचिंग $300 मिलियन जो है डॉलर्स को अब टच कर रहा है। इसके अलावा वो कहते हैं जी कि हमारा जो यहाँ पे जो बड़े बड़े जो स्टेडियम है जैसे कि BMO फील्ड है उसके अंदर बैठने की कैपेसिटी जो है वो सिर्फ 30 या 35 जो है
30,000 है, 40,000
तो मिनिमम। फीफा कहता है कि एटलीस्ट 45,000 1000 फैंस जो हैं एक स्टेडियम में बैठ के उनको देखना चाहिए, तो वो कहते हैं
15,000 सीटें
और 15,000 और टेम्पररी सीटें इनको लगानी पड़ेंगी, लेकिन लगाएंगे किधर, ये देखे तो सही इस छोटी सी जो है वो स्टेडियम ही,
इसीलिए तो इतने मिलियन डॉलर चाहिए इनको,
तो वो उसके अंदर
खींच खींच के कहीं लगा देंगे,
खींच खींच के लगाएंगे। तो वो कह रहे हैं जी कि ये इसके अंदर इनको 15,000 और सीटें लगानी है, तो इनके पास कोई स्टेडियम ऐसा नहीं है जिसके के अंदर 45,000 फैन। और आपको पता है कि जो, चलो ये तो कतर है, लेकिन दुबई के अंदर जो हैं वो स्टेडियम्स 1,00,000 बंदा, बल्कि अगर आप थोड़ा और भी, क्योंकि वहां पे लोग जरा फिटे हुए ज्यादा है ना, एक एक सीट छोड़ के भी, वो एटलीस्ट 125,000 बंदा जो है उनके स्टेडियम।
तो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी आप देखें अमेरिका में भी बहुत सारे,
अमेरिका में
जो 100,000 से ज्यादा
बैठ सकते हैं।
हमारा जो यहाँ पर है डोम जो है हमारा, उसके अंदर भी आप क्लोज टू 45,000 to 50,000 पीपल आराम से बिठा सकते हैं उसको।
हाँ, पर ये तो बीएमओ फील्ड में कर रहे हैं ना, तो अब ये उसके अंदर
बीएमओ फील्ड
तो में, तो वो कहते हैं जी हम तो सोच रहे थे 30 या 45 मिलियन में ये सारी खेड़ हो जाएगी, 300 मिलियन पे अब ये खेड़ पहुंच गई है।
हाँ, मगर 300 मिलियन पे भी अब ये देख लें कि 74 कुछ मिलियन डॉलर्स है जो इनके इनके जेब से इनको डालना पड़ेगा।
77 मिलियन ये देंगे, 184 मिलियन जो है वो फेडरल और प्रोविंशियल।
77 मिलियन डॉलर्स में से अभी स्पॉन्सरशिप बड़ी मिलेगी इनको, स्पॉन्सरशिप मिलेगी, फिर टैक्सेस जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर, हजारों की तादाद में लोग आके यहाँ पर ठहरेंगे, है ना, जो एंटरटेनमेंट और ये जो टूरिज्म है,
वो कहते हैं जीडीपी बेनिफिट जो है इज 307 मिलियन डॉलर्स।
देयर यू गो।
या
तो ये कोई नेवर,
एंड जॉब्स, एंड जॉब्स,
कभी लूजिंग प्रोपोजिशन नहीं होता। अगर इन्होंने गलत काम किया तो फिर तो लूजिंग प्रोपोजिशन हो जाएगा, मगर नॉर्मली
गेम्स तो कभी भी नहीं होती ना लूजिंग।
यस, नॉर्मली यहाँ पर इनको ये प्रोपोजिशन जो है इनको लूजिंग प्रोपोजिशन नहीं हो सकती।
तो जैसे मैं साउथ कोरिया गई थी ना मजद भाई, तो वहां पे सियोल में, तो वो जब मैंने उनका वो देखा, बड़ा जबरदस्त उनके भी वहां पे है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उन्होंने की हुई है, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये जो तुम लोग इधर ओलंपिक्स वगैरह कराते हो, वो कहते हैं कि ये जो आप सियोल की हालत बदले हुए इतनी ज्यादा देख रहे हैं, ये ओलंपिक्स के बाद एकदम से इसने जो है ये इस सिटी ने और एज अ होल भी कंट्री ने जो है ये एकदम से टर्न लिया है।
लोगों की आंखें खुल जाती है ना, पीपल डोंट नो व्हाट टोरंटो इज और व्हाट वैंकूवर इज ना, तो इसलिए हालांकि मॉन्ट्रियल ने भी अप्लाई किया था, तो मॉन्ट्रियल को भी मिल सकता था ये, क्योंकि उनके पास तो स्टेडियम ऑलरेडी है, मगर अराउंड द स्टेडियम जो इतने सालों से
जो है
बंजर पड़ा हुआ है, वो
नहीं है डेवलप,
तो वो जो है उसकी वजह से उन्होंने कहा कि नहीं इसको ठहर जाए भाई, आप कह रहा
है कि ट्रांटो का नाम ही बड़ा बड़ा इन्होंने कर देता है ना, ट्रांटो दे कोल कुछ है नहीं।
अब देखें आज आज जो इन्होंने जनाब टोरी साहब ने जो यहाँ पर वाटर फ्रंट है हमारा, उसका भी जो नक्शा खींचा है, तो वो भी उस वक्त तक तैयार हो जाएगा, क्या जबरदस्त नक्शा खींचा है,
बहुत ही ब्यूटीफुल है
ना,
बहुत ही ब्यूटीफुल।
दिस आर थिंग्स दैट यू नो यू गॉट
डेवलप अ सिटी।
मगर टोरंटो में अगर एक चीज मिसिंग है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, मींस के हाईवेज बहुत
है।
कम है
नो,
यहाँ पर दे हैव टू हैव मच मोर हाईवेज। इतने बड़े शहर में इतना वर्ल्ड क्लास सिटी है और उसके अंदर आपने 401 लगाया हुआ है, यू नो डॉन वैली एंड गार्डनर को आप हाईवे नहीं कह सकते, क्योंकि वो जो वैसे हाईवेज, मेरा ख्याल है कि कम से कम 10-15 हाईवेज चाहिए
इनको, चाहिए एटलीस्ट 10 तो चाहिए ही चाहिए, भाई जितनी बेतहाचा यहाँ पे आबादी बढ़ गई है उसके लिए चाहिए। आप देखें लोगों की कितनी हालत खराब हो गई है रोडों के ऊपर, 2-2 घंटे रोड्स के ऊपर हैं, वो गार्डनर के ऊपर और उसके ऊपर
है। ये जो है ये जब कैथलीन विन जो थी वो रेलवे की मिनिस्टर थी, है ना, मिनिस्टर फॉर रेलवे, वो हमारे स्टूडियो आई हुई थी हमारे पास, तो मैंने उनको यही बताया था, मैंने कहा यार कि आप ये जो ट्रेन सिस्टम ही अपना अच्छा कर लो,
जैसे लंदन में है, लंदन में जो ट्यूब सिस्टम है उनका,
उस जमाने में अगर उस जमाने में आज से 15-16 साल पहले अगर ये कर लेती तो वो उस वक्त कॉस्ट कितनी कम होती है। अब देखिए कॉस्ट थी 100% और ज्यादा चली गई है, तो ये उस जमाने में उन्होंने बात नहीं सुनी। वो उनसे एक और जो रेलवे के साथ साथ उनका एक और मिनिस्ट्री थी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आती थी, तो उनसे मैंने कहा कि आप जो है ये जब भी हाईवेज यहाँ पर, जब भी हर गर्मियों में और ऐसे मौसम में आपने हाईवेज बंद किए हुए होते हैं, विंटर में सारे स्नो है, स्नो के साथ साथ आप यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वो भी तो मतलब रोजाना आप दो दो तीन तीन घंटे जो है लोगों के खराब करते हैं. बाय टाइम दे गेट टू वर्क मेंटली डिजास्ट्रस,
डिसरे में चली जाती है ना सारी चीज,
तो उनकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है. तो शी सेड व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट शुड वी डू. आई सेड टेक अ लेसन फ्रॉम चाइना.
चाइना का तो नाम ही नहीं सुनना चाहते.
नहीं, उस जमाने में बड़ी अच्छी दोस्ती थी.
उस जमाने में
चाइना की दोस्ती थी बड़ी ना. तो वो जो है मैंने कहा लर्न, वी शुड लर्न समथिंग फ्रॉम चाइनीज दैट वो. अब वो करते क्या है कि रात को 12 o'clock के बाद उन्होंने काम करना शुरू किया. सुबह तक उन्होंने बड़े बड़े काम निपटा दिए.
आपको पता जब कोविड शुरू हुआ था तो कैसे उन्होंने वो
हॉस्पिटल
बना दिए थे.
तीन हॉस्पिटल, नॉट वन, नॉट टू.
कितने, 10 days में? टेन डेज में तीन हॉस्पिटल बना,
तीन हॉस्पिटल ऑपरेशनल. और ये भी नहीं कि वो कोई लकड़ी का बनाकर खड़ा कर दिया
और वो मतलब अफरा तफरी मची हुई है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलां इधर उधर भाग रहे हैं. नो, बिल्कुल प्रॉपर सारे सिस्टम्स हैं, नर्सें हैं, डॉक्टर्स हैं, सब.
इवन डजंट मैटर हु दे आर, इफ वी कैन लर्न समथिंग फ्रॉम देम वी शुड लर्न. मगर उस जमाने में तो चाइना से हमारी अच्छी खासी दोस्ती थी, तो वी कैन टॉक लाइक दैट एट दैट टाइम. मगर आजकल तो हम ये नहीं कह सकते कि चाइना से कुछ सीखो, मगर उस जमाने में क्योंकि दोस्ती थी हमारी अच्छी खासी, ट्रेड चलता था हमारा सारा, पूरा ट्रेड हमारा उनके साथ होता था. तो
मजिद भाई इतनी बड़ी खबर हम ये क्या चाइना ते ट्रांटो ते फलां ते टमका. आपको पता है मजिद भाई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी
जी,
पता है ना आपको, आईवी लीग यूनिवर्सिटी अमेरिका की, स्टैनफोर्ड. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जनाब एक पेपर लेकर आ रही है, पता है आपको किस पे मजिद भाई?
नहीं बताया. बताए
इमरान खान के ऊपर.
अच्छा,
द वे ही डेल्ट विथ COVID-19 पैंडेमिक इन हिज कंट्री. कैन यू इमेजिन ये कितनी, और इसको कोई मीडिया का बंदा हाईलाइट नहीं कर रहा, इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे. एंड परहैप्स आई थिंक इन आवर कंट्री और अमंगस्ट आवर कम्युनिटी पीपल डोंट रियली अंडरस्टैंड द स्टेचर ऑफ दीज आईवी लीग यूनिवर्सिटीज लाइक स्टैनफर्ड एंड यू नो ऑल ऑफ दीज. स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी मजिद भाई पेपर ला रही है इमरान खान पे.
ये परसों की न्यूज थी
कि ये आई थी. आई मीन टू बी एग्जैक्ट मैं आपको बताती हूँ, सैटरडे नाइट दिस न्यूज केम ऑन सैटरडे नाइट कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इज राइटिंग अ पेपर ऑन द वे, और उन्होंने उसके अंदर पीटीआई नहीं लिखा, इमरान खान गवर्नमेंट डेल्ट विद द COVID-19 पेंडेमिक.
उस जमाने में तो ये था, उस जमाने में जब कोविड अपने पीक पे था
जी,
तो उस वक्त भी नॉट वन बट कई कंट्रीज फ्रॉम यूरोप दे वांटेड टू फाइंड आउट फ्रॉम इमरान खान व्हाट आर यू डूइंग डिफरेंट.
और उसके अंदर उसने एक और भी चीज कही है कि कैसे इसने क्लाइमेट जो चेंज है उसको ये फाइट करने के लिए इसके क्या इनिशिएटिव थे. तो दे आर राइटिंग अ फुल पेपर ऑन हिज इनिशिएटिव, आपको पता है. और ये जो इसका इसने जो इंट्रोड्यूस किया था वो सेहत कार्ड जो कि आते सारी इन्होंने खत्म किया है सबसे पहले वो गरीब लोगों के लिए कि अगर तुम्हारे पास वो सेहत कार्ड है तुम पाकिस्तान के किसी भी हॉस्पिटल में मुफ्त जाके अपना ऑपरेशन और इलाज करा सकते हो. राइट, ऑपरेशंस मुफ्त करा सकते हो. वो दैट दे इमीडिएटली एज सून एज दे केम दे उसके ऊपर वो लोग लिख रहे हैं, वो मेंशन कर रहे हैं सेहत कार्ड पाकिस्तान का एंड सो मेनी अदर थिंग्स. मैं कल उसकी डिटेल्स लेकर आऊंगी.
हाँ, डिटेल्स लेकर
आएंगे कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है पेपर के अंदर क्या क्या लिख रही है, कौन कौन से पाकिस्तान के इनिशिएटिव्स जो है वो लिख रही है उसके अंदर. इट्स सच अ आई मीन प्राउड मोमेंट फॉर अस पाकिस्तानीज
रिगार्डलेस ऑफ हिज पार्टी.
पाकिस्तान मजा भाई उसके अंदर पाकिस्तान का नाम आ रहा है उसको. आपको मैं वही बोल रही हूँ कि उसके अंदर पीटीआई गवर्नमेंट का नाम ही नहीं है, इमरान खान गवर्नमेंट उसमें लिखा हुआ है ऑफ पाकिस्तान. You see, so it is Pakistan. They are talking about how Pakistan dealt with. उन्होंने ये भी नहीं लिखा हुआ कि अंडर इमरान खान, उन्होंने सिर्फ लिखा इमरान खान की गवर्नमेंट, बट हाउ पाकिस्तान डेल्ट विद COVID-19 ड्यूरिंग दिस पीरियड, वॉट इज एहसास कार्ड दैट दे इंट्रोड्यूस्ड एंड वॉट इज दिस एंड वॉट इज दैट. वो इनिशिएटिव सारों के ऊपर जो है वो पेपर निकाल रहे हैं.
क्योंकि यहां पर आप देख लेना अमेरिका जैसे इतनी बड़ी कंट्री में
मिसमैनेजमेंट, शीयर मिसमैनेजमेंट.
नहीं,
इंग्लैंड में देखें आप.
उसके अलावा यहाँ पर वो नहीं है आपका ये एहसास कार्ड की तरह.
नहीं, माजिद भाई वहाँ पे तो धिक्के मार मार के लोगों को बेचारों को निकाला है जिनके के पास इंश्योरेंस नहीं थी.
एग्जैक्टली
उन्होंने कहा कि सिर्फ हम COVID-19 का उसको इलाज देंगे जिसके पास इंश्योरेंस है.
एग्जैक्टली
और जिसको बेचारे को माइल्ड था उसके पास अगर हेल्थ कार्ड था भी तो उसको कहा घर जाओ, यहाँ पे ज्यादा सीरियस केसेस हैं हम करेंगे. تو یہ تو یعنی یہ تو وہ بات ہے ماجد بھائی کہ جو میرے اپنے گھر کے ملازم تھے نا یا جو میرے کزنز کے گھروں میں ملازم ہیں یا جو میری فیملی کے گھروں میں ملازم ہیں یہ تو ان میں سے کئی لوگوں نے جو ہے یہ جا کے علاج اپنے اس کے اوپر کروائے ہیں احساس کارڈ پہ. تو آئی مین دیٹس ہاؤ آئی پرسنلی لوگوں کے لوگوں کو واقعی غریبوں کو فائدہ ہوا ہے اس سے. اور جو لوگ اس نے لگائے ہوئے تھے ڈاکٹر نشتر جو تھی جس کو کہ کہا تھا کہ یہ سارا تم نے اسٹیئر کرنا ہے. آپ کو پتا ہے ڈاکٹر نشتر شی واز ون آف دا شارٹ لسٹڈ نیمس پاکستانی ہے نا ماجد بھائی. عمران خان نے تو اس کو چوز کیا خالی ٹھیک ہے اس کے اندر ہی ہیز آئی فار ٹیلنٹ رائٹ. وہ لیڈی آپ کو پتا ہے کس پوسٹ کے لیے فائٹ کر رہی تھی اس کو کس چیز کے لیے کیا تھا یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کے لیے وہ پوسٹ کے لیے وہ فائٹ کر رہی تھی. اس کا آپ لیول دیکھیں کیا ہے. پھر آپ دیکھیں ڈاکٹر یہ جو یاسمین راشد جس بیچاری کو عورت کو پکڑا اور مارا پیٹا انہوں نے ابھی یہ جو گورنمنٹ آئی ہے. پروفیسر ڈاکٹر یاسمین راشد نے کوئی 10 degrees لی ہوئی ہیں اینڈ شی ٹاپ ان یو کے ان سم آف دا بیسٹ اینڈ یو نو جو وہ ہیں اس کے فیلڈ کی جو یونیورسٹی یو کے کی جو یونیورسٹیز
پڑھی لکھی ٹیلنٹڈ.
ہاں اس کے بعد ڈاکٹر سلطان جو کہ یہ این سی او سی کے ہیڈ تھے اور جو چلاتے تھے. ڈاکٹر جو سلطان تھے ان کی کبھی آپ ڈگریز دیکھیں اینڈ ہاؤ ہی ہیز ورکڈ اکراس دا گلوب اینڈ ود یونائٹڈ نیشنز اینڈ ٹاپ ڈاکٹر تھے وہ ڈاکٹر سلطان بھی. سو یہ سارا پرائڈ ہے نا پاکستان کا پرائڈ ہے نا ماجد بھائی ایسے اتنے ٹیلنٹڈ اور پڑھے لکھے لوگوں کو لے کر آنا. ایون فار دیٹ میٹر آئی مین جو جس کی کے استاد تھے یہ ڈاکٹر شیریں مزاری قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں یہ پڑھاتی تھی جن کی یہ استاد تھی وہ تو ان کو ورشپ کرتے ہیں ڈاکٹر شیریں مزاری کو. شی کہتے ہیں شی از سچ اے بریلینٹ پروفیسر.